नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। प्रदेश भर में संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश भर में पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया जारी रखने के राज्य सरकार को निर्देश दिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
रेलवे ने 60 स्टेशनों के बाहर स्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र बनाने का फैसला किया है। इसके लिए नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा 60 स्टेशनों पर प्रवेश नियंत्रण शुरू किया जाएगा। केवल कंफर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रवेश की अनुमति होगी। वेटिंग लिस्ट टिकट वाले या बिना टिकट वाले यात्रियों को स्टेशन के बाहर चिन्हित स्थानों पर इंतजार करना होगा। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए स्टेशनों पर नए डिजाइन वाले फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। प्रमुख स्टेशनों पर अब वॉर रूम होंगे, जहां विभिन्न रेलवे विभागों के अधिकारी भीड़ बढ़ने और आपात स्थिति के दौरान समन्वय स्थापित करेंगे।
विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश भर में संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में गढ़वाल मंडल के आवासीय विद्यालयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवासीय विद्यालयों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ने पर आवासीय विद्यालय ऑनलाइन मोड में आ जाएंगे, जिससे उनकी निगरानी के साथ ही समस्याओं का भी शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा। डॉ. रावत ने कहा कि इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य और वार्डन को प्रबंधन कौशल विकास के लिए IIM काशीपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन्हें चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल का प्रशिक्षण भ्रमण भी कराया जाएगा, ताकि आवासीय विद्यालयों में प्रबंधन व शैक्षणिक गतिविधियों को और सुदृढ़ किया जा सके। विभागीय मंत्री ने छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में प्रत्येक माह स्वास्थ्य शिविर लगाने और सप्ताह में फार्मासिस्ट या नर्सिंग अधिकारी की नियमित ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के साथ ही अहम निर्णय भी लिए गए। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण केंद्र सरकार की निर्धारित आयु समय सीमा 31 मार्च 2025 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में उत्तराखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश के प्रथम आने पर मुख्य सचिव ने ग्राम विकास की सचिव राधिका झा व उनकी टीम को बधाई दी। ओलंपिक 2028 की तैयारियों और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से तेलंगाना में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्री, वरिष्ठ खेल प्रशासक और विशेषज्ञों ने भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की रणनीति पर चर्चा की। डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने का विजन रखा है, जिसके लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। वहीं चिंतन शिविर में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। उन्होंने गांव, कस्बे और शहर में स्कूल स्तर पर ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उनकी तैयारी करने पर बल दिया, ताकि ओलंपिक जैसी स्पर्धा में देश के खिलाड़ी चैंपियन बन सकें।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिणाम बिना न्यायालय की अनुमति के घोषित नहीं करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं समाज, परिवार और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण धुरी हैं और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का परिचय दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं साहस, आत्मनिर्भरता और कर्तव्यपरायणता की प्रतीक हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वे न केवल परिवार की देखभाल करती हैं बल्कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए, उनका वर्तमान संवारने के लिए राज्य सरकार द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल निवासी ओलंपियन और एथलीट अंकिता दिहानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के साथ एक संदेश साझा किया।
नमस्कार, मैं अंकिता दिहानी, उत्तराखंड से एक एथलीट और ओलंपियन। मुझे राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने का सौभाग्य मिला और यह सब मेरे कठिन परिश्रम, मेरे कोच, परिवार और आपके समर्थन की वजह से संभव हो पाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को यह कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने अंदर एक असीम शक्ति रखती हैं। जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगी और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करती रहेंगी तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। खेल ने मुझे सिखाया है कि हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है संघर्ष करना, खुद को साबित करना और हर दिन खुद को बेहतरीन बनाना। यह संदेश सिर्फ खेल के लिए नहीं बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं से यह आग्रह करती हूँ कि खुद पर विश्वास रखें, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखें। धन्यवाद।
चमोली जिले के गोविंदघाट में अलकनंदा नदी पर पुलना गांव और हेमकुट साहिब जाने वाले मार्ग के लिए लोक निर्माण विभाग ने अस्थायी पुल बना दिया है। पिछले दिनों भूस्खलन के कारण अलकनंदा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे पुलना गांव और हेमकुट साहिब जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राजभवन देहरादून में आयोजित वसंतोत्सव के पहले दिन कल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिली। कार्यक्रम में जौनसारी लोक कलाकारों ने प्रदेश के प्रसिद्ध हारूल और तांदी नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। इन पारंपरिक नृत्यों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का जीवन चित्रण देखने को मिला। इसके अलावा संस्कार सांस्कृतिक दल ने कुमाऊनी और गढ़वाली लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। वहीं भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने भी लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भीड़ को नियंत्रित करने के कई उपायों की घोषणा की। प्रदेश भर में संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया जारी रखने के राज्य सरकार को निर्देश दिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।